दूसरा राजा अध्याय 10। इजबेल का पति आहाब भी बड़ा दुष्ट था, उसके 70 पुत्र थे। अतः स्पष्ट है सिर्फ इजबेल अकेली ही उसकी पत्नी नहीं थी, उसके पुत्रों का पालन पोषण समरिया और इज़राइल में हुआ था और निजी शिक्षकों ने उन्हें शिक्षा दी थी। वे अपने अपने समुदाय के अगवे थे। येहू ने पत्र में लिख भेजा, तुम्हारे पास आहाब के बेटे पोते हैं, इसलिए जिसे तुम चाहो उसका अभिषेक करो, युद्ध करने वाले लोगों को जमा करो, जिसे चाहो अपने ऊपर राज्य करने के लिए अभिषेक करो और बाहर आकर हमसे संघर्ष करो। शहर में जो पुरुष थे उन्होंने कहा, ये येहू स्वभाव से बहुत सख्त है, उसने पहले ही 2 राजाओं को मार डाला है, हम कैसे उसके सामने खड़े होंगे। इसलिए उन्होंने येहू को पत्र लिखकर वापस भेजा और लिखा, हम स्वयं को तुझे सौंपते हैं और स्वीकार करते हैं कि तू इसराइल का राजा है। तब येहू ने कहा, यदि तुम अपनी बातों में विश्वास योग्य हो तो कल आहाब के बेटे और पोतों के सिर मुझे भेज दो। इसलिए दूसरे दिन उन्होंने आहाब के 70 बेटे पोतों के सिर टोकरियों में रखकर भेज दिए और इस तरह से प्रभु का वचन पूरा हुआ जिसमें परमेश्वर ने कहा था कि वो आहाब के सब उत्तराधिकारियों को काट डालेगा, वे उस परिवार को मिटा डालेगा और परमेश्वर ने अपना वचन पूरा किया। तब येहू 42 पुरुषों से मिला जो यहूदा से आए थे और नहीं जानते थे कि उनका राजा अहजायाह मार डाला गया है। येहू ने पूछा, तुम लोग कौन हो? उन्होंने कहा, हम सब अहजायाह के भाई हैं। इसलिए उसने आज्ञा दी कि वे सब भी मार डाले जाएं। अध्याय 10 पद 19 में येहू ने कहा, बाल के सब नबियों, सब उपासकों और सब याजकों को मेरे पास बुला लाओ, उनमें से कोई भी न रह जाए, क्योंकि बाल के लिए मेरा एक बड़ा यज्ञ होने वाला है। वो ये सब चलाकी से कर रहा था क्योंकि वो बाल की उपासना खत्म करना चाहता था, इसलिए उसने बाल के उपासक याजकों और लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, हम लोग एक महान बलिदान बाल को चढ़ाएंगे और मैं चाहता हूं कि तुम सब बाल की उपासना में शामिल हो। यूं इसराइल के सब लोग जिन्होंने बाल की उपासना उसके मंदिर में की थी इकट्ठे हुए और उसने पूछा, तुम्हें निश्चय है कि यहां प्रभु का कोई सेवक नहीं है? नहीं, यहां सब बाल के सेवक हैं। सब अपने अपने वस्त्र पहन ले। उन्होंने पहन लिए चोला और वो सब कुछ जो वे बाल की उपासना में पहना करते थे। तब उसने 80 लोगों को आज्ञा दी, अब इन सब को मार डालो। यदि तुमने किसी भी उपासक को बचने दिया तो तुम्हें अपनी जान देनी होगी। इसलिए उन्होंने बाल के सब उपासकों को मिटा डाला। इस तरह बाल के पुजारी इसराइल के राज्य से मिटा दिए गए, एकदम समाप्त किए गए। फिर भी येहू ने सोने के 2 मंदिर जो यरोबाम ने दान और बेतेल में बनवाए थे नष्ट नहीं किए। वहां सोने के मंदिरों में उपासना चलती रही। इस तरह येहू ने पूरी तरह परमेश्वर की सेवा न की। उसने बाल की उपासना का अंत किया, परंतु उन सोने के मंदिरों में उपासना चलती रही। अध्याय 10 पद 30 और 31। और यहोवा ने येहू से कहा, इसलिए कि तूने वो किया जो मेरी दृष्टि में ठीक है और आहाब के घराने से मेरी इच्छा के अनुसार बर्ताव किया है, तेरे परपोते के पुत्र तक तेरी संतान इसराइल की गद्दी पर विराजती रहेगी। परंतु येहू ने इसराइल के परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था पर पूर्ण मन से चलने की चौकसी न की, वरन यरोबाम जिसने इसराइल से पाप करवाया था उसके पापों के अनुसार करने से वो अलग न हुआ। इस समय से इसराइल के राज्य की शक्ति का घटना आरंभ हुआ। हजाएल ने इसराइल की सीमा को तोड़ना आरंभ किया। पूर्व में यर्दन नदी के समीप जो स्थान गादी मनशे और रूबेन का देश है और वे फिर आराम के अधीन होने लगे। यहां एक मुख्य सबक है। यदि हम यहोशू की पुस्तक में देखें तो इसराइल की संतान प्रतिज्ञा के हुए देश में पहुंचने ही वाले थे कि वे कुछ समय यर्दन नदी के पूर्व में रुके जो मोआब में गिलाद की ओर है। कुछ लोग यहोशू के पास आकर कहने लगे, हमें इच्छा नहीं है कि हम वहां प्रतिज्ञा के हुए देश में जाकर रहें, हमें यही रहना अच्छा लग रहा है, हम लोग पशु पालने वाले हैं और इस देश में काफी घास है, ये पशुओं के लिए उपयुक्त देश है, हम यही बस जाएं तो अच्छा रहेगा। वास्तव में यहोशू बहुत अधिक विचलित हो गया। वो पहले मूसा के पास आया और मूसा अधिक परेशान हुआ। उसने कहा, मैं विश्वास नहीं करता, क्या तुम्हें याद नहीं हमारे साथ कादेश बर्निया में क्या हुआ जब लोगों ने प्रतिज्ञा किए हुए देश में जाने से इनकार किया? उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है, तुमने हमें गलत समझा है, हम अपने लोगों को लड़ने और उस देश को जीतने को भेजेंगे, परंतु जब उस देश को जीत लिया जाएगा हम शीघ्र यर्दन के इस पार आ जाएंगे। इसलिए उन्होंने एक वाचा बांधी कि रूबेन गाद और मनशे का आधा गोत्र अपने लोगों को यर्दन पार प्रतिज्ञा के देश को जीतने के लिए भेजेंगे। एक बार जब वो देश जीत लिया जाएगा तब वे यर्दन नदी के इस पार जहां उन्होंने शहर बसाए हैं लौट सकते हैं और वे प्रतिज्ञा किए हुए देश में यर्दन पार नहीं रहेंगे। यदि हम प्रतीकात्मक व्याख्या को आत्मिक संदर्भ प्रदान करें तो मिस्र पाप की बंधुआई को दर्शाता है, फिरौन को शैतान दिखाता है, लाल सागर बपतिस्मा को दर्शाता है और परमेश्वर के साथ संबंध में आना नया जीवन पाना दर्शाता है। यर्दन नदी प्रतिज्ञा किए हुए देश पहुंचने में आखिरी अड़चन थी। यर्दन नदी शारीरिक मृत्यु नहीं है। यहीं पर बहुत से लोग गलती करते हैं, विशेषकर गीत लिखने में जहां गानों में कई बार यर्दन को शारीरिक मृत्यु की उपमा दी जाती है। सत्य तो यह है कि यर्दन पार करने के बाद भी उनको बहुत युद्ध करने पड़े थे, जबकि स्वर्ग में कोई युद्ध ना करना होगा। यर्दन पार जाकर भी उनको हार का मुंह देखना पड़ा, जबकि स्वर्ग में कोई हार ना होगी। परंतु यर्दन आत्मिक अनुरूपता में पुराने जीवन और स्वभाव को मृत दर्शाती है। ये वही विश्वास का स्थान है जहां मैं अपने पुराने जीवन को मृत मानकर आत्मा के जीवन में प्रवेश करता हूं जो यीशु मसीह में प्रतिज्ञा किया हुआ विजयी जीवन है। बहुत से मसीही हैं संसार से बाहर जो आ चुके हैं, परंतु वे कभी भी पवित्र आत्मा के जीवन के उस धन में जो यीशु मसीह में है नहीं पहुंचे और उनका मसीही जीवन जंगल में चलने जैसे अनुभव है। बहुत से ऐसे भी हैं जो यर्दन पार जीवन से संतुष्ट है। वे कहते हैं, हम खुश हैं, मैं अपने मसीह जीवन में संतुष्ट हूं, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्यों सब कुछ त्याग दूं या मुझे क्यों इन संसारिक चीजों को अस्वीकार करना चाहिए, मैं यर्दन के इस पार बहुत खुश और संतुष्ट हूं। ये शरीर के साथ जीना है, मैं वास्तव में नहीं जानता कि मुझे आत्मा में चलना चाहिए या आत्मा के साथ चलने की लालसा रखनी चाहिए। वास्तव में उनके पास दृढ़ आत्मिक इच्छा नहीं है कि वे अपना जीवन परमेश्वर की भरपूरी में चलाएं। वे अपने साधारण मसीह जीवन से संतुष्ट हैं। वे लोग गाद, रूबेन और मनुष्य के कुलों की तरह हैं, जिन्होंने कहा, हम यही रहने में संतुष्ट हैं। उन्हें अंदर जाने से कोई मतलब नहीं। दुर्भाग्य से ऐसी स्थिति में काफी मसीही है। वे परमेश्वर की भरपूरी, जो पवित्र आत्मा उनके जीवन को देना चाहता है, पाने को तैयार नहीं है। परंतु ये खतरनाक बात है, क्योंकि गाद, रूबेन और मनुष्य सबसे पहले शत्रु के चुगल में फंसे। वे लोग यर्दन के इस पार थे। उनके पास परमेश्वर के प्रतिज्ञा किए हुए देश की सुरक्षा नहीं थी। हमने बहुत लोगों को, जो परमेश्वर के भरपूरी में नहीं है, गिरते देखा है। वे अपने पुराने मनुष्यत्व को मसीह के साथ क्रूस पर मरा नहीं देखते और आत्मा के जीवन और मार्ग पर नहीं चलते। ऐसे ही लोग अधिकतर शत्रु की बंधुआई में पड़ जाते हैं। इसलिए आत्मिक ज्ञान आवश्यक है। ये तीन गोत्र सबसे पहले आराम के राजा हजाएल के हाथों में पड़े थे। अध्याय 10 पद 34। येहू के और सब काम और जो कुछ उसने किया और उसकी पूर्ण वीरता, ये सब क्या इसराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? ये पुस्तक हमारी बाइबल में नहीं है। हमारे पास पहला और दूसरा इतिहास है, जो यहूदा के राजाओं के बारे में है। इसलिए जब हम दूसरे राजा से पहले इतिहास में जाते हैं, हम अधिकतर इतिहास को दोहराते हैं। हमें यहां भी यहूदा का इतिहास मिलेगा। इसराइल के राजाओं के बारे में कुछ अधिक विवरण यहां नहीं मिलता, परंतु यहूदा के राजाओं के बारे में अधिक ही मिलेगा, क्योंकि ये इतिहास यहूदा के राजाओं की विधिवत अभिलेख है। ये पुस्तकें थी इसराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक, जिसके बारे में बहुत बार लिखा गया है। वे पुस्तकें हमारी बाइबल में नहीं है। अध्याय 10 पद 35 और 36। निदान येहू अपने पुरखाओं के संग सो गया और शमरोन में उसको मिट्टी दी गई और उसका पुत्र येहो आहाज उसके स्थान पर राजा बन गया। येहू के शमरोन में इसराइल पर राज्य करने का समय तो 28 वर्ष का था।